ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस के अवसर पर देश में विभिन्न कार्यक्रम हुए आयोजित। संविधान में प्रावधान किए गए अधिकारों को कानून बनाकर क्रियान्वित करने की बात पर महिला नेत्रियों ने दिया जोर। आसाम बाजरा और डोटी में भूकंपोत्तर पुनर्निर्माण और पुनर्स्थापना के लिए असम में स्थापित हुआ कार्यालय। साधन स्रोत से जितना संभव हो सरकार भूकंप पीड़ितों को मदद मुहैया कराएगी, गृहमंत्री की प्रतिबद्धता। सुनसरी की इटहरी उपमहानगरपालिका में समझौता अवधि से 6 महीने पहले ही बस पार्क बनकर हुआ तैयार। और रूस के हमले में यूक्रेन में कम से कम 20 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। 115वां अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस सरकार सरोकार वाले निकायों और विभिन्न महिला संगठनों ने आज विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर मनाया। अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस मूल समारोह समिति द्वारा आज काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम को महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री नवल किशोर शाह सूरी ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने महिला के अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान से मौजूदा व्यवस्था को क्रियान्वित करने की प्रतिबद्धता जताई। कार्यक्रम में उपसभामुख इंदिरा राणा, राष्ट्रीय सभा की उपाध्यक्ष विमला घिमरे, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष तप बहादुर मगर, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कमला पराजुली लगायत ने महिला के अधिकारों के लिए संविधान के प्रावधानों के प्रभावकारी क्रियान्वयन करने की बात पर जोर दिया। नारी दिवस के मौके पर नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय महिला विभाग द्वारा आज पार्टी मुख्यालय सानेपा में आयोजित कार्यक्रम में सभापति शेर बहादुर देउबा ने कहा कि महिला अधिकार के मामले में नेपाल विश्व के अन्य देशों से आगे है। नारी दिवस के अवसर पर राजधानी काठमांडू सहित देश के विभिन्न स्थानों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। सुनसरी की इटहरी उपमहानगर पालिका में समझौता अवधि से 6 महीने पहले ही बस पार्क का निर्माण पूरा हो गया है। उपमहानगर पालिका के वार्ड नंबर 9 स्थित बस पार्क क्षेत्र में 3 मंजिला टर्मिनल भवन सहित सभी संरचनाएं बनकर तैयार हो चुकी है। ये बात उपमहानगर पालिका के प्रवक्ता दिवस पोखरेल ने बताई। बता दें कि 1 बीघा क्षेत्रफल में 9,48,00,000 रुपए की लागत में बस पार्क बनकर तैयार हुआ है। चीन के तिब्बत स्थित डिंगे काउंटी को केंद्र बिंदु बनाकर आए भूकंप का झटका काठमांडू सहित देश के विभिन्न भागों में महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप मापन तथा अनुसंधान केंद्र के मुताबिक आज दोपहर 2:35 पर आए भूकंप का पैमाना 5.9 रिक्टर स्केल था। राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली बीच भेंटवार्ता हुई है। राष्ट्रपति निवास सितल निवास में राष्ट्रपति पौड़ेल और प्रधानमंत्री ओली के बीच आज शाम भेंटवार्ता हुई है। उनके बीच देश के समसामयिक विषयों पर विचार विमर्श हुआ है। ये जानकारी राष्ट्रपति के सचिवालय ने दी। गृहमंत्री रमेश लेखक ने कहा कि भूकंपोत्तर पुनर्निर्माण और पुनर्स्थापना को सरकार प्राथमिकता देकर काम कर रही है। असम जिला समन्वय समिति कार्यालय में स्थापित जिला भूकंपीय पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना परियोजना कार्यान्वयन इकाई कार्यालय का आज उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि स्रोत और साधन से संभव होने तक सरकार भूकंप पीड़ितों को मदद मुहैया करा रही है। बीते साल कार्तिक में आए भूकंप से प्रभावित नागरिकों को सहज तरीके से सेवा प्रवाह करने के उद्देश्य से स्थापना की गई इकाई से अछाम बाजरा और डोटी के नागरिकों को सहयोग प्राप्त होगा। आज ही नेपाल प्रेस यूनियन द्वारा डोटी में आयोजित कार्यक्रम में गृहमंत्री लेखक ने कहा कि गणतंत्र का विकल्प राजतंत्र नहीं हो सकता। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
नेपाल टेलिकम को 4G भिडियो कल गर्दा नो बोर जी नेपाल टेलिकम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकमको फोर जी
गेम खेल्दा नि टेन्सन नजी नेपाल टेलिकमको फोर जी आफ्नो भन्ने आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकमको फोर जी
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। पेयजल मंत्री प्रदीप यादव ने कहा कि स्वच्छ पानी स्वस्थ जीवन को साकार करने के हिसाब से सरकार काम कर रही है। आज मोरंग की पथरी शनिचरे नगर पालिका स्थित पथरी पेयजल परियोजना की शिलान्यास करने के दौरान उन्होंने कहा कि एक घर एक धारा अभियान के मार्फत सभी नागरिकों का घरांगन में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सरकार क्रियाशील है। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने कहा कि जनता के जीवन बदलने के अभियान में सभी राजनीतिक दलों को केंद्रित होना चाहिए। आज रौथट के गरुरा नगरपालिका में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विपन्न वर्ग के उत्थान के लिए काम करना सभी राजनीतिक दलों का दायित्व तो है। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी राप्रपा के अध्यक्ष राजेंद्र लिंगदेन ने देश की आर्थिक अवस्था कमजोर होने पर चिंता जताई है। आज राप्रपा द्वारा बीरगंज में आयोजित जनसभा में उन्होंने देश भर के संकलित राजस्व एवं राष्ट्र सेवक कर्मचारियों के वेतन तक की व्यवस्था न हो पाने की मौजूदा परिस्थिति पर चिंता जताई है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। रूस ने यूक्रेन को अमेरिकी खुफिया सूचनाएं मिलनी बंद होने के बाद यूक्रेन पर बड़ा हवाई हमला किया है। रूस ने यह हमला यूक्रेन के संकटग्रस्त दोनेस्क क्षेत्र के एक शहर पर किया है। इस रूसी हमले में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई है जबकि कई अन्य लोग घायल हुए हैं। बता दें कि यूक्रेन के साथ अमेरिका द्वारा उपग्रह चित्र साझा करना बंद करने के फैसले के बाद से रूस ने हवाई हमले तेज कर दिए हैं। रूसी सेना ने शुक्रवार देर रात कई हमले किए थे। इन हमलों में से 30 लोगों के घायल होने की खबर भी है जिसमें डोब्रोपिलिया शहर में 8 अपार्टमेंट ब्लॉक क्षतिग्रस्त हो गए जो उस मोर्चे के करीब है जहां रूसी सैनिक लगातार आगे बढ़ रहे हैं। यूक्रेन की राज्य आपातकालीन सेवा ने कहा है कि एक रूसी ड्रोन ने यूक्रेनी दमकल ट्रक को उस व्यक्त क्षतिग्रस्त कर दिया जब बचाव दल जलती हुई इमारतों को बुझाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। रूसी हमले में कीव के डोनेस्क क्षेत्र में 11 लोगों की मौत हो जाने के बाद वहां के गवर्नर वादिम फिलासकिन ने आज क्षेत्र के शोक दिवस घोषित किया और चेतावनी दी कि मलबे में अभी और पीड़ित मिल सकते हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि घायलों में कम से कम 5 बच्चे शामिल हैं। यह हमला रूस द्वारा दर्जनों मिसाइलों और ड्रोनों से यूक्रेनी ऊर्जा सुविधाओं पर हमला करने के ठीक 24 घंटे बाद हुआ है जिसके उससे नागरिकों को गर्मी और रोशनी पहुंचाने और उसके रक्षा के लिए महत्वपूर्ण हथियार कारखानों को बिजली देने की उसकी क्षमता कम हो गई है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 20.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10.8 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस के अवसर पर देश में विभिन्न कार्यक्रम हुए आयोजित। संविधान में प्रावधान किए गए अधिकारों को कानून बनाकर क्रियान्वित करने की बात पर महिला नेत्रियों ने दिया जोर। आसाम बजरा और जोटी भूकंपोत्तर पुनर्निर्माण और पुनर्स्थापना के लिए अछाम में स्थापित हुआ कार्यालय। साधन स्रोत से जितना संभव हो सरकार भूकंप पीड़ितों को मदद मुहैया कराएगी। गृहमंत्री की प्रतिबद्धता। सुनसरी की इटहरी उपमहानगरपालिका में समझौता अवधि से 6 महीने पहले ही बस पार्क बनकर हुआ तैयार। और रूस के हमले में यूक्रेन में कम से कम 20 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।